लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे दुर्व्यवहार के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कलीसिया के सदस्यों द्वारा दुराचार को सहन किया। हमारी अर्थ याचना है कि कलीसिया के भीतर ही वे अपनी पीड़ा का समाधान ढूंढ सकें तथा शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। प्रभु घमंडियों का घर गिराता, किंतु विधवा के खेत के सीमा पत्थर की रक्षा करता है। प्रभु को दुष्टों की योजनाओं से घृणा है, किंतु प्रेममय वचन उसे प्रिय हैं। पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है, किंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहेगा। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 15वें अध्याय के 25वें, 26वें और 27वें पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में सूक्ति ग्रंथ का लेखक सत्य और न्याय की नींव पर घर निर्माण का परामर्श देता है। वह पाप की कमाई और घूस को घृणित निरूपित करता तथा अपने पाठकों को इन दुर्गुणों से दूर रहने की सलाह देता है। वह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि मनुष्यों के विचार ईश्वर के समक्ष उनके शब्द होते हैं और शब्दों का न्याय उन विचारों पर निर्भर रहता है। दुष्टों के विचार और शब्द उनके ही समान दुष्ट होते हैं। उनमें कोई न कोई बुरी प्रवृत्ति निहित होती है और ऐसी हरकतें प्रभु के लिए घृणित हैं। दुष्टों के विपरीत शुद्ध व्यक्तियों के विचार और शब्द शुद्ध, स्वच्छ, ईमानदार होते हैं और ईश्वर को प्रिय एवं सुग्राह्य होते हैं। शुद्ध हृदय से ईश नियमों का पालन करने वाले तथा ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों की भक्ति उनके उत्थान का स्रोत बनती है। श्रोताओं, 27वें पद में लेखक आगाह करता है कि पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है, किंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहेगा। यह तो हम सभी जानते हैं कि लालची व्यक्ति अपने परिवारों को मुसीबत में डालते हैं, लाभ के लिए खुद को दुनिया का गुलाम बना लेते हैं। वे अपने आप को और अपने आसपास के सभी लोगों को तनाव में रखते, व्यापार में नुकसान होने पर निराशा से झल्ला उठते हैं तथा खुद तो परेशान होते ही हैं, अपने संपर्क में आने वाले सभी को बेचैन कर डालते हैं। पाप की कमाई की वजह से वह अपने घर को परेशान करते, घर वालों को, बच्चों को, परिजनों को एक बोझ और झुंझलाहट समझते हैं। ऐसे व्यक्ति जो लोभ लालच में पड़कर रिश्वत लेते और धन प्राप्त करने के अवैध तरीकों का उपयोग करते हैं, अपने बाद आने वालों पर अभिशाप छोड़ जाते हैं। घमंडी, लोभी और घूस लेने वाले व्यक्तियों के विपरीत वह व्यक्ति होता है जो घूस और भ्रष्टाचार से घृणा करता और ऐसे कामों के प्रलोभन में नहीं पड़ता है जहां उसे झूठ का सहारा लेना पड़े। वह सत्य के मार्ग पर चलता और जो कुछ उसके पास है उसी में संतोष करता है और इसीलिए प्रभु की सांत्वना और कृपा का पात्र बनता है। वह जीवित रहेगा, यानी कि उसका जीवन जीवन होगा, उसके जीवन में सुख और शांति होगी। उदार और धर्मी व्यक्ति अपने परिवारों पर आशीर्वाद लाते हैं। वे जो उपहारों से घृणा करते, जो न्याय को विकृत करने के लिए अपने हाथ में दी गई घूस का बहिष्कार करते और धन प्राप्त करने के सभी पापपूर्ण अप्रत्यक्ष तरीकों से घृणा करते हैं, वे जीवित रहेंगे। उनका जीवन सुख, संतोष, समृद्धि और प्रतिष्ठा से परिपूर्ण होगा।
वंदे
आगे सूक्ति ग्रंथ के 15वें अध्याय के 28वें और 29वें पदों में लेखक कहता है, धर्मी सोच समझकर उत्तर देता है किंतु दुष्टों के मुख से बुराई प्रकट होती है। प्रभु दुष्टों से दूर रहता किंतु वह धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। श्रोताओ, जिन मनुष्यों को प्रभु का भय होता है, यानी कि जो नैतिक और मानवीय मूल्यों की परवाह करते हैं, वे अपने मुख से निकलने वाले हर शब्द को नाप तौल कर बोलते हैं। उनके मन में यह आशंका बनी रहती है कि कहीं ऐसा न हो कि उतावली से कहने पर वे अपने प्रभु का अपमान कर डालें। दुष्ट के मन में ऐसा कोई विचार नहीं आता। उसके होठों पर जो आता है वह बक देता है, चाहे उससे कुछ भी हानि हो। लोग प्रायः स्पष्टवादी और मुखर होने पर खुद पर गर्व करते हैं, जबकि वास्तव में वे अपने विवेक की दयनीय स्थिति का ही प्रदर्शन करते हैं। वस्तुतः यदि वे अपने शब्दों के मूल्यों के प्रति जागृत रहें, तो वे बोलने से पहले अच्छी तरह से अपने शब्दों को तौलेंगे और इस प्रकार शरारतों और दुखों से बचे रहेंगे। इसीलिए लेखक कहता है कि धर्मी कोई भी बात कहने से पहले ध्यान से अपने शब्दों के प्रभाव पर विचार करते हैं। वह कहता है, प्रभु दुष्टों से दूर रहता किंतु वह धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। श्रोताओ, सच तो यह है कि दुष्टों को ईश्वर से कुछ भी आशा रखने का अधिकार नहीं। प्रभु ने दुष्टों के रोने पर ध्यान देने का कोई वादा नहीं किया है। जब संकट आता है तो उन्हें कोई नहीं मिलता कि वे किसको पुकारें। उदाहरणार्थ, जब मूर्ति पूजक इजरायली अपने संकटों में ईश्वर की ओर फिरे तो प्रभु ने उनकी विनती सुनने से इनकार कर दिया था। ईश्वर ने उन्हें उन देवताओं के शरण जाने के लिए कहा जिनकी उन्होंने सेवा की थी, ताकि वे महसूस कर सकें कि ईश्वर से दूरी का मतलब क्या है। हट धर्मी और मूर्ति पूजक इसराइलियों के विपरीत ईश्वर ने उन लोगों की शरण ली जो धर्म परायण थे तथा जिन्होंने सच्चे मन से ईश्वर की आराधना की थी तथा उनके नियमों पर चले थे। यह याद रखें कि वह मनुष्य जो स्वयं को ईश्वर में प्रसन्न रखता है, वह उस समय प्रभु को एक निकट मित्र की तरह पाएगा जब उसकी आत्मा अंधकार में घिरी होगी। संत योहन रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय के 7वें पद में हम प्रभु येसु के इन शब्दों को पढ़ते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहे तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। फिर सूक्ति ग्रंथ के 15वें अध्याय के 30वें और 31वें पदों में लेखक कहता है, प्रमुदित आंखें हृदय को आनंदित करती और शुभ समाचार शरीर को स्फूर्ति प्रदान करता है। जो हितकर चेतावनी का ध्यान रखता उसे ज्ञानियों में स्थान मिलेगा। श्रोताओ, किसी की प्रमुदित आंखों को देखकर हमारा मन प्रसन्न हो उठता है, क्योंकि उसकी आंखें उसके अंतर मन में समाहित आनंद को प्रकट करती हैं और शुभ समाचार से व्यक्ति प्रफुल्लित हो उठता है और उसकी बोझिल अंतर आत्मा को सुख शांति का अनुभव होता है। शुभ समाचार वह है जिसकी चर्चा रोमियो को प्रेषित पत्र के 10वें अध्याय में संत पॉल करते हैं। लिखते हैं, हृदय में विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है। धर्म ग्रंथ के कथन की याद दिलाते हुए लिखते हैं कि येसु मसीह का वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में है और तुम्हारे हृदय में है। जो उस पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा।
वंदे येसु त्राण तू ही है, वंदना हम करते।
वंदे येसु त्राण तू ही है, वंदना हम करते।
Thank you.
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने बृहस्पतिवार को ताइवान के मानवतावादी बौद्ध धर्म के संयुक्त संघ के एक प्रतिनिधि मंडल का वैटिकन में स्वागत किया तथा मुलाकात की संस्कृति को बढ़ावा देकर भाईचारे को प्रोत्साहन देने में धर्मों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। संत पापा ने कहा कि शैक्षणिक तीर्थ यात्रा मुलाकात की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष अवसर है जिसमें हम खुद को दूसरों के लिए खोलते हैं, यह विश्वास करते हुए कि हम उनमें दोस्तों और भाइयों तथा बहनों की खोज करेंगे और इस प्रक्रिया में अपने बारे और अधिक जानेंगे। ताइवान के 104 बौद्ध प्रतिनिधियों से संत पापा फ्रांसिस ने बृहस्पतिवार को वैटिकन के क्लेमेंटीन सभागार में मुलाकात की। संत पापा ने कहा कि उनकी यात्रा, जिसको वे शैक्षणिक तीर्थ यात्रा कहते हैं, मुलाकात की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष अवसर है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक तीर्थ यात्रा एक महान समृद्धि का स्रोत बन सकती है। एक दूसरे के साथ मुलाकात करने, एक दूसरे को जानने और अपने विभिन्न अनुभवों की सराहना करने के लिए कई अवसर प्रदान कर सकती है। मुलाकात की संस्कृति सेतु का निर्माण करती है और पौत्र मूल्यों एवं आस्था की खिड़की खोलती है जो दूसरों को प्रेरित करती है। लोगों को विभाजित करने वाली पूर्व धारणाओं, पूर्वग्रहों या उदासीनता के कैदी बनाने वाले दीवार को ध्वस्त कर देती है। संत पापा ने शैक्षणिक तीर्थ यात्रा के दूसरे लाभ के बारे बतलाते हुए कहा कि यह ईश्वर के प्रति हमारे दृष्टिकोण की विशिष्टता को समृद्ध करती है। वैटिकन एवं रोम में धार्मिक कलाकृति उस धारणा को दर्शाती है कि यीशु ख्रिस्त में ईश्वर स्वयं हमारे मानव परिवार के प्रति प्रेम के कारण इस संसार में तीर्थयात्री बन गए। ख्रिस्तियों के लिए ईश्वर जो यीशु की मानवता में हम में से एक बन गए, हमें पौत्रता की तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं जिसके द्वारा हम उनके समान बनते और बढ़ते हैं और इस प्रकार संत पेत्रुस के शब्दों में उनके ईश्वरीय स्वभाव के भागीदारी बन जाते हैं। तीर्थस्थल की तुलना मरुस्थल से करते हुए संत पापा ने कहा, पूरे इतिहास में धार्मिक विश्वासियों ने मुलाकात के मरुस्थल के रूप में पौत्र समय और स्थान बनाए हैं जहां पुरुष और महिलाएं बुद्धिमानी और अच्छी तरह से जीने के लिए आवश्यक प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं। संत पापा ने कहा, मुलाकात के मरुस्थल की आवश्यकता हमारे समय में कहीं अधिक है जो तीव्र परिवर्तन से चिन्हित है और मानव एवं ग्रह को प्रभावित कर रहा है। संत पापा ने कहा कि पहले की तरह हमारे समय में भी हमारी धार्मिक परंपराओं के ज्ञान और मानवता के साथ हम एक नई शैक्षणिक गतिविधि के लिए एक प्रेरक बनना चाहते हैं जो हमारी दुनिया में सार्वभौमिक बंधुत्व को आगे बढ़ा सके। उन्होंने कामना की कि रोम में उनकी तीर्थ यात्रा एक सच्ची मुलाकात का अवसर बने। अंत में संत पापा ने उन्हें धन्यवाद देते हुए उनके लिए ईश्वरीय आशीष की कामना की। क्या आपका विश्वास थक चुका है? क्या आप इसे फिर तरोताजा करना चाहते हैं? तब आप ईश्वर की कृपा की खोज करें। आराधना में बैठें, पाप स्वीकार में अपने आप को क्षमा किए जाने दें और क्रूस के सामने खड़े हों, संक्षेप में उन्हें प्यार करने दें। उक्त बात संत पापा फ्रांसिस ने प्रभु के लिए 24 घंटे प्रार्थना पहल में भाग लेने हेतु आमंत्रित करते हुए कही। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से विश्वासियों को प्रार्थना के लिए आमंत्रित किया। प्रभु के लिए 24 घंटे प्रार्थना पहल की शुरुआत शुक्रवार 17 मार्च को शाम को होगी और यह शनिवार 18 मार्च तक चलेगी। इस पहल को हर साल चालीसा काल में किया जाता है, जिसमें आराधना की प्रार्थना और पाप स्वीकार संस्कार के लिए विशेष अवसर प्रदान किया जाता है। सिनट के महासचिव कार्डिनल मारियो क्रेच ने अक्टूबर में होने वाली महासभा की तैयारी हेतु 7 सदस्यों के साथ एक तैयारी आयोग का गठन किया है। महासभा की तैयारी हेतु 7 सदस्यों से गठित आयोग में एक धम्म बहन भी शामिल हैं। वे एक मर्सेडियन धम्म बहन हैं। उनका नाम सिस्टर शिजुए फिलो हिरोता है और वे जापान के कार्तिक धम्म अध्यक्ष सम्मेलन की शांति और न्याय समिति में एक सलाहकार हैं। तैयारी आयोग का गठन सिनट के ढांचे पर प्रेरित संविधान एपिस्कोपालिस कोमोनियो के अध्याय 10 अनुच्छेद 1-2 के अनुसार किया गया है। सिनट के सचिवालय द्वारा यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि बुधवार 31 मई को धन्य कुमारी मरियम की अपनी कुटुम्बनी एलिजाबेथ से भेंट की स्मृति दिवस पर 16वें धर्माध्यक्षों की धर्म सभा की तैयारी हेतु विश्व स्तर पर माता मरियम से प्रार्थना की जाएगी। इसका उद्देश्य है ईश्वर की प्रजा को चल रही प्रक्रिया के महत्व से अवगत कराना और विश्वासियों से प्रार्थना में साथ देने का आग्रह करना तथा कलीसिया की पूरी सिनट प्रक्रिया विशेषकर महासभा को माता मरियम के संरक्षण में समर्पित करना। कार्डिनल ग्रेच ने पूर्वी कलीसिया के धर्माध्यक्षों एवं धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया है कि वे एक गहन प्रार्थना का समय निकालें जो विश्व भर के मरियम तीर्थस्थलों में लोकप्रिय भक्ति की सुंदरता को प्रकट करेगा। तीर्थस्थल का चुनाव देश के धर्माध्यक्ष सम्मेलन के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रार्थना में लोक धर्मियों, पुरोहितों और धर्म सामाजियों सभी की सहभागिता होनी चाहिए। वैटिकन के लिए अमेरिका, यूक्रेन और पोलैंड के राजदूतावास रोम में पोलैंड संस्थान की साझेदारी में रूस के आक्रमण से आम यूक्रेनियों को हुई क्षति को दर्शाने वाली एक फोटो प्रदर्शनी प्रस्तुत करेंगे। रोम में आयोजित विशेष फोटो प्रदर्शनी यूक्रेन के लोगों की शक्ति और प्रतिरोधों को प्रस्तुत करेगी। एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक प्रदर्शनी से पता चलता है कि रूस के आक्रमण ने यूक्रेन के आम लोगों को अपना निशाना बनाया है। इताली फोटोग्राफर इरियाना अर्चना और यूक्रेनी फोटोग्राफर माइकल द्वारा ली गई तस्वीरें युद्ध की क्रूर वास्तविकताओं को दर्शाती हैं। उधर भारतीय कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अप्रवासियों के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग ने अप्रवासियों तक अधिक प्रेरित तरीके से पहुंचने का निश्चय किया है। सीसीबीआई के अप्रवासियों के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्रीय सचिवों की 2 दिवसीय सभा 12-14 मार्च को बैंगलोर महाधर्म प्रांत के प्रेरित केंद्र पालना भवन में आयोजित की गई थी, जहां वैटिकन के समग्र मानव विकास के लिए गठित परम धर्म पीठ विभाग एवं जेनेवा के अंतर्राष्ट्रीय कार्तिक अप्रवासी आयोग के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सभा की विषय वस्तु थी भारत के बहु सांस्कृतिक संदर्भ में अप्रवासियों की प्रेरित देखभाल एक सिनोडल मार्ग। आयोग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अप्रवासियों की सेवा उन्हें निर्भर बनाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें व्यवहार्य एवं टिकाऊ बनाने की दिशा में है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।